रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहा है सुधार। प्रधानमंत्री ने सभी शुभेच्छकों को दिया धन्यवाद। नेपाल की एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे और न ही दूसरे की जमीन पर कोई दावा करेंगे, संचार मंत्री वास्कोटा का कथन। और अल्बानिया की राजधानी तिराना में भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 40। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने की जानकारी दी है। आज ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री ओली ने बताया कि एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन के बाद से उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री ओली ने अपना हालचाल जानने की चाह और शुभेच्छा रखने वालों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा ने कहा कि मौजूदा सीमा विवाद के समाधान के लिए सरकार की ओर से भारत के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक पहल की जा चुकी है। मार्गशीर्ष 5 गते को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक द्वारा किए गए निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए आज सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संचार कर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री बास्कोटा ने कहा कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर लिपुलेख, कालापानी, आदि संपूर्ण सीमा समस्या के समाधान के लिए सरकार ने राजनीतिक और कूटनीतिक पहल की है। सरकार के प्रवक्ता भी रहे मंत्री बास्कोटा ने आश्वस्त किया कि नदी की सीमा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, विभिन्न समय में की गई संधियों और अन्य सरकारी अभिलेखों के आधार पर नेपाल की एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे और अन्य देशों की भूमि पर दावा भी नहीं करेंगे। मार्गशीर्ष 14 को होने वाले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा एवं स्थानीय तह के उपनिर्वाचन के लिए नए मतदाताओं को परिचय पत्र वितरण कार्य शुरू किया गया है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। मार्गशीर्ष 14 गते शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होने की जानकारी भी आयोग ने दी। उपनिर्वाचन के लिए 37 जिलों के 52 रिक्त पदों के लिए होने वाले मतदान के लिए 247 मतदान स्थल और 37 मतदान केंद्र तय किए गए हैं। उपनिर्वाचन में मतदान करने वाले 4,114 मतदाताओं की सूची तैयार की गई है। काठमांडू के चंद्रागिरी में मिट्टी के धसने में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। चंद्रागिरी नगरपालिका 8 के माता तीर्थ में सड़क बनाने के क्रम में मिट्टी धसने में दबने से दांग की बबई गांव पालिका 1 के प्रेम पुन एवं प्रकाश घरती की मृत्यु हो गई है। अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवाड़ा ने कहा कि छोटे तथा घरेलू उद्योग संचालन के लिए पूंजी का अभाव नहीं होने देंगे। नेपाल हस्तकला महासंघ द्वारा आयोजित 17वें हस्तकला व्यापार मेला का आज काठमांडू में उद्घाटन करते हुए मंत्री बास्कोटा ने कहा कि हस्तकला के समान उत्पादन और निर्यात प्रतिबद्ध को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। काठमांडू महानगरपालिका के उपप्रमुख हरिप्रभा खड़की ने कहा कि हस्तकला के विकास और प्रवर्धन के लिए महानगर हमेशा तत्पर रहेगा। मौके पर मेला के संयोजक धर्मराज साक्य ने हस्तकला के उत्पादन, डिजाइन, वस्तु और विविधीकरण में सहयोग पहुंचाना मेला का मुख्य उद्देश्य है। 5 दिनों तक चलने वाले मेले में नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ साथ स्वदेशी और विदेशी देशों के 200 से ज्यादा स्टॉल हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यापारिक विश्राम का।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हाँ, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले गृह मन्त्रालय एवं यसकै अन्तर्गत रहे निकायों को नीति तथा बजट के लक्ष्यों को शत प्रतिशत रूप में प्राप्त करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय में आयोजित प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा के गृह मंत्री थापा ने कहा कि शांति के बिना शांति संभव नहीं है। उन्होंने सुरक्षा एवं प्रविधि में निवेश करने को आवश्यक बताया। कार्यक्रम में गृह सचिव प्रेम कुमार राय ने प्रथम चौमासिक प्रगति को संतोषजनक बताया। समाजवादी पार्टी नेपाल के संघीय अध्यक्ष डॉ बाबूराम भट्टराई ने कहा कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग भ्रष्टाचार नियंत्रण करने में असमर्थ रहा है। आज दांग के तुलसीपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ भट्टराई ने कहा कि आयोग अब तक बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में नाकाम रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण देश गरीबी और बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसता जा रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता भीम रावल ने कहा कि भारत से कूटनैतिक तरीके से वार्ता कर नेपाल और भारत की सीमा विवाद का समाधान किया जाएगा। असम के साफे बगर में आज हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता रावल ने कहा कि कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा नेपाल का ही अभिन्न अंग है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सभापति देउबा पर राष्ट्रीयता के मुद्दे पर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या 35 से बढ़कर 40 हो गई है। इस शहर में मंगलवार को सुबह 6.4 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान काफी लोग की जान भी चली गई थी। इस भूकंप से सबसे ज्यादा विनाश डूरेस शहर में हुआ। अल्बानिया डेली न्यूज़पेपर के मुताबिक इस भूकंप में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जबकि 47 इस भूकंप में फंस गए थे जिन्हें निकाला गया था। 725 लोग अभी तक लापता है। इस भूकंप में लापता हुए सभी लोगों को ढूंढने का काम तेजी से चल रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने यामीन पर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। यामीन राजकोष से चुराए गए धन का इस्तेमाल करने के दोषी करार दिए गए हैं। यह मामला पर्यटक रिजॉर्ट विकास के लिए द्वीपों के पट्टे पर देने के संबंध में हुए कथित संदिग्ध सौदे और यामीन के बैंक खाते में 10 लाख अमेरिकी डॉलर रकम का पता लगने से जुड़ा है। यामीन अपने 5 साल के शासन के बाद सितंबर 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। इसके बाद ही उनका बुरा दौर शुरू हो गया। द मालदीव इंडिपेंडेंट की खबर के अनुसार पुलिस ने पिछले सप्ताह जांच खत्म करने के बाद कहा था कि यामीन पर राजकोष से चुराए गए धन के इस्तेमाल का आरोप है। 2014 के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इस अपराध के लिए 5 से लेकर अधिकतम 15 साल की जेल सजा और 64,850 अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इस लिहाज से यामीन को कम ही सजा हुई है। इराक में प्रदर्शनकारियों ने नजर शहर में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास को आग लगा दी है। इराक में कई दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इराक से बाहर जाओ ईरान के नारे लगाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही ईरानी वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गए थे। ये इस महीने ईरानी वाणिज्य दूतावास पर दूसरा हमला है। इससे पहले करबला में भी ऐसा हमला हुआ था। 2 महीने से चल रहे प्रदर्शनों और हिंसा के ताजा दौर में कम 344 लोग मारे गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहा है सुधार। प्रधानमंत्री ने सभी शुभेच्छकों को दिया धन्यवाद। नेपाल की 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे और न ही दूसरे की जमीन पर कोई दावा करेंगे, संचार मंत्री बास्कोटा का कथन। और अल्बानिया की राजधानी तिराना में भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 40। इसी के साथ मुख्य समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, शुभरात्रि।
Thank you.